बहू, तुम्हारे भैया आए हैं, चाय नाश्ते का कुछ इंतजाम करो।
जी मम्मी जी।
अगले ही पल आहाना का जवाब आया और द्रीशांत, जो आहाना को हर ओर तलाश रहा था, उसकी निगाहें रसोई की ओर घूम गई। जितनी बेताब आहाना उससे मिलने को थी, उतना ही बेचैन और बेसब्र द्रीशांत भी था। द्रीशांत जो मना करने वाला था, एकदम से रुक गया। इस बहाने वो अपनी बहन को देख तो सकेगा, और इसी लालच में वो खामोश बैठा बेसब्री से आहाना के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनट बाद एक जोड़ी कदम रसोई से बाहर आए। अपनी बहन की एक झलक को तरसती द्रीशांत की निगाहों ने बड़ी ही व्याकुलता से उस चेहरे का रुख किया था, पर जैसे ही नज़र सामने से आती फलक पर पड़ी, उसका दिल एकदम से मायूस हो गया। द्रीशांत के चेहरे पर उदासी और मायूसी साफ छलकने लगी थी, जिसे महसूस करते हुए अभिजीत जी ने फलक से सवाल किया। फलक बेटा, आहाना बहू कहाँ है? उनके भाई इतनी दूर से आए हैं, उन्हें कहिए आकर मिल लें।
भाभी आ रही हैं पापा, फलक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और नमस्ते बोलते हुए ट्रे द्रीशांत की ओर बढ़ा दी।
द्रीशांत ने पानी का ग्लास उठाकर अभी एक घूंट पानी पिया ही था कि पायलों की रुनझुन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और निगाहें अनायास ही उस ओर उठ गई। हल्की चॉकलेटी रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली खूबसूरत सी साड़ी में लिपटी, नई नवेली दुल्हन जैसे 16 श्रृंगार किए, सर को आंचल से ढके, पलके झुकाए आहाना धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आहाना को सामने देखकर उसके व्याकुल मन को कुछ सुकून सा मिला। उसने ग्लास टेबल पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। आहाना के कदम उसके ठीक सामने आकर रुके और वो उसके पैर छूने को झुक ही रही थी कि द्रीशांत ने उसके कंधों को थामते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी बहन की जगह यहाँ है, अपने भाई के दिल में, उसके कदमों में नहीं। द्रीशांत के कहे शब्द उनके रिश्ते की गहराई, आहाना की उसकी ज़िंदगी में अहमियत और उनके प्यार को दर्शा रहे थे, जिसे महसूस करते हुए आहाना की आंखें आंसुओं से लबालब भर गई थीं। उसके लिए अब अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो गया था। रोना नहीं चाहती थी, पर बिन बुलाए मेहमान जैसे वे ज़िद्दी आंसू आंखों में आ बसे थे। गला रुंध गया था और वो चाहकर भी कुछ कह न सकी थी। कुछ पल बाद द्रीशांत ने उसे खुद से अलग किया और प्यार से उसके गाल को छूते हुए सवाल किया, कैसी है मेरी गुड़िया? द्रीशांत का ये सवाल पूछना था और आहाना की भीगी पलकें उसकी ओर उठ गईं। पलकों के पीछे छुपे आंसू हर बांध को तोड़ते हुए उसके रुखसारों पर बिखरने लगे। उसको यूं रोते देखकर द्रीशांत के साथ बाकी सब परेशान हो गए। आहाना एक बार फिर उसके सीने से जा लगी और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचे सिसकने लगी। एक तरफ द्रीशांत उसे यूं रोते देखकर विचलित हो गया था, फलक समेत बाकी सब आहाना की मनोस्थिति को समझते हुए संजीदा हो गए थे और कुछ दुखी भी, पर इन सबसे इतर रूपाली जी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे मन ही मन किलकिला रही थी और झुंझलाई हुई भी थी। शायद आहाना के आंसू उन्हें झूठा दिखावा या नाटक लग रहे थे, तभी तो उनका रिएक्शन इतना रूखा था। द्रीशांत आहाना को अपने सीने से लगाए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और लगातार उससे कुछ ना कुछ कह रहा था। अनु, क्या हुआ गुड़िया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ बेटा, तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। सब ठीक तो है, क्या हो गया गुड़िया? द्रीशांत विचलित सा उससे सवाल कर रहा था, पर आहाना बस उसके सीने से लगी सिसक रही थी। कुछ देर बाद जब वो कुछ शांत हुई तो द्रीशांत ने उसे खुद से अलग किया। उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बड़े ही प्यार से उसके आंसुओं को पोंछने लगा। क्या हो गया अनु, शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, खुद को संभालो। चलो अब बिल्कुल चुप हो जाओ और पानी पियो। द्रीशांत ने अपने लिए आया पानी का ग्लास उठाकर उसके लबों से लगा दिया। आहाना ने दो घूंट पानी पिया, फिर ग्लास साइड कर दिया, जिसे द्रीशांत ने वापस टेबल पर रख दिया। फिर आहाना के गाल को प्यार से छूते हुए चिंतित स्वर में बोला, अब ठीक हो तुम? आहाना ने सर हिलाते हुए हामी भर दी। रो क्यों रही थी? द्रीशांत के इस सवाल पर आहाना ने अपनी भीगी पलकें उठाकर उसे देखा और मासूमियत बिखेरते हुए सर इनकार में हिला दिया। हमें नहीं पता, बस आपकी आवाज़ जब कानों में पड़ी तो भावुक हो गए। बहुत कोशिश की कि ना रोएं, पर आपको देखते ही खुद ही आंसू बहने लगे। पगली, डरा दिया था तुमने मुझे। द्रीशांत ने चैन की सांस ली और प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए उसे हल्की डांट लगाते हुए नाराजगी जताई। आहाना ने निचले होंठ को बाहर निकालते हुए निगाहें झुकाई और नज़र द्रीशांत की हल्की आसमानी कलर की शर्ट पर गई, जिस पर उसका सिंदूर लग चुका था। भैया, आहाना ने धीमे स्वर में उसे पुकारा। द्रीशांत ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आपकी शर्ट फंदी हो गई, आहाना ने मुंह बिचकाते हुए मासूमियत से कहा। पहले तो उसकी बात सुनकर द्रीशांत समेत बाकी सब लोग चौंक गए, पर जब नज़र शर्ट पर गई तब सब माजरा समझकर मुस्कुरा उठे। कोई बात नहीं,
मेरी बहन ठीक है, इतना बहुत है मेरे लिए। दृशांत ने प्यार से उसके सर को चूम लिया। दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग और उनका प्यार देखकर सबकी मुस्कान गहरा गई। चलो भाई, रोना धोना बहुत हो गया। बहू, अपने भाई को कमरे में लेकर जाओ, उनके हाथ मुंह धुलवाओ, बातें करो, हम खाना लगवाकर आप दोनों को बुलवाते हैं। अभिजीत जी ने बड़े ही अपनेपन से कहा। शायद वो समझ रहे थे कि दोनों भाई बहनों को अकेले वक्त की जरूरत है, ताकि अपने दिल की बातें खुलकर एक दूसरे से साझा कर सकें। पर वो जैसे ही चुप हुए, दृशांत ने संकोचवश तुरंत ही इनकार करना चाहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खाकर आया हूँ। बस आप सब नाश्ता कीजिए और फिर अनु को विदा कीजिए, वहां सब हमारी राह देख रहे हैं। विदा भी कर देंगे बेटा, पर अब नाश्ते के वक्त घर आए हो तो बिना खाए तो नहीं जाने देंगे। अभिजीत जी ने एक बार फिर बड़ी ही मोहब्बत से इसरार किया। दृशांत फिर कुछ कहने ही वाला था कि फलक फट से बोल पड़ी, भैया अब इनकार मत कीजिए, आपके आने की खुशी में भाभी ने खास आपके लिए बहुत मेहनत करके आपकी पसंद का खाना बनाया है। अगर आपने नहीं खाया तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उनका दिल भी दुखेगा। फलक की बात सुनकर दृशांत की नजरें आहाना की ओर घूम गई, जो चेहरे पर उदासी लिए बड़ी ही उम्मीद से उसे तक रही थी। भैया आप घर आए और बिना खाए चले जाएंगे, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज खाना खाकर जाइएगा। अक्षय ने बड़ी ही विनम्रता से आग्रह किया और जैसे ही चुप हुआ, अन्वय ने फट से मुस्कुराते हुए कहा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपको बिना खाए कहीं जाने नहीं देंगे। आपने इतनी बार हमारी आवभगत की है, अब हमें भी अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। सबके कहने पर आखिर में दृशांत को मानना ही पड़ा। बहन का ससुराल था, बार बार इनकार करना भी ठीक नहीं था। फिर जब पता चला कि आहाना ने खास उसके लिए खाना बनाया है, तो इनकार करके उसका दिल कैसे दुखा देता, अपनी बहन का उम्मीद कैसे तोड़ देता। उसके हामी भरते ही सब खुश हो गए। वहीं इस दावत में कोई दिलचस्पी ना लेते हुए रूपाली जी मुंह फेरे खड़ी खींचती रहीं। दृशांत से उन्हें पर्सनल परेशानी थी, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो नापसंदगी उनके व्यवहार में साफ झलक रही थी। दृशांत और हाना को कमरे में भेजा गया ताकि कुछ वक्त अकेले में एक दूसरे के साथ बिता सकें, खुलकर एक दूसरे से बात कर सकें। फलक चाय और स्नैक्स वगैरह भी कमरे में रख गई थी। कैसी है मेरी गुड़िया? दृशांत ने फलक के जाते ही आहाना से पहला सवाल यही किया था, जिस पर आहाना ने हौले से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम अच्छे हैं। घर पर सब कैसे हैं? पापा, मम्मी, अंतरा, पल्लवी और आप? हम सब भी ठीक हैं, बस तेरी कमी बहुत खलती है। दृशांत के इस जवाब पर आहाना कुछ भावुक हो गई, पर खुद को संभालते हुए एक बार फिर मुस्कुरा दी, हम भी आप सबको बहुत याद करते थे। यहाँ सबका व्यवहार तेरे लिए कैसा है अनु? तू यहाँ खुश तो है? दृशांत ने विचलित स्वर में सवाल किया और परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। उसकी खैरियत जानने के साथ उसके लिए ये भी जानना जरूरी था।
दुनिया के बाकी भाइयों की तरह उसे भी अपनी बहन की चिंता थी और वो सुनिश्चित करना चाहता था कि जिस लाडली बहन को उसने दिल पर पत्थर रखकर खुद से दूर भेजा, वो इस नए घर में अनजान लोगों के बीच कैसे रह रही है, सब उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो वहाँ खुश है भी या नहीं। आहाना उसकी चिंता, फिक्र और उसके पीछे छुपे प्यार को महसूस कर रही थी। वो एक बस फिर मुस्कुराई, हम यहाँ खुश हैं भैया, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, पापा जी, अनगय, फलक सब बहुत चाहते हैं हमें, हमारा बहुत सम्मान करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। मम्मी जी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, पर वो भी बुरी नहीं है। यहाँ सबसे हमें बहुत अपनापन और प्यार मिलता है, पर वो कहते हैं ना कि ससुराल में चाहे कितना भी प्यार मिले, वो मायका नहीं बन सकता। वैसे ही यहाँ सबके प्यार और अपनेपन के बावजूद हमें हमारे घर की, अपने परिवार की, आप सबकी बहुत याद आती थी। आहाना की मुस्कान कुछ फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर झलकती उदासी देखकर दृशांत प्यार से उसके गाल को छूते हुए हौले से मुस्कुरा दिया, उदास मत हो, अब तो तू अपने घर ही जा रही है। आहाना भी तुरंत ही हामी भरते हुए मुस्कुरा उठी। दृशांत पल भर को ठहरा, फिर उसने अगला सवाल किया, अक्षय जी का व्यवहार तेरे प्रति कैसा है? वो ख्याल रखते हैं ना तेरा? बहुत ख्याल रखते हैं, व्यवहार भी बहुत अच्छा है उनका, वो साथ देते हैं, सम्मान करते हैं, अहमियत देते हैं, तभी तो हमें सबका प्यार मिलता है। माँ कहती है ना कि ससुराल में लड़की की इज्जत उसके पति के उसके प्रति व्यवहार पर निर्भर करती है, उसका पति ही वहाँ उसके मान सम्मान की रक्षा करता है। हमें भी इस घर में जो जगह, जो मान, जो प्यार व अपनापन मिला है, उसकी वजह वो है। आहाना का जवाब सुनकर दृशांत के मन में सुकून सा उतरा था। सही बात थी ये, अगर जीवन साथी साथ हो, आपको समझे, आपका साथ दे, तो चिंता की कोई बात नहीं होती, फिर तो जिंदगी से बड़ी मुसीबत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अक्षय का आहाना के प्रति अच्छा व्यवहार उसकी सुखद भविष्य का आधार था और अब दृशांत संतुष्ट व निश्चिंत था।
कुछ देर में दोनों का बुलाया गया। आहाना के साथ मिलकर फलक ने सबको नाश्ता सर्व किया, फिर उसे भी अपने साथ ही बिठा लिया। रूपाली जी पहले ही आहाना के अभिजीत जी से पर्दा ना करने पर खुन्नस खाई हुई थी, अब उसके यूं साथ बैठकर खाना खाने पर और ज्यादा चिढ़ उठी। वहीं दृशांत के मन को सुकून सा मिल गया। नाश्ते के बाद रूपाली जी ने औपचारिकता निभाते हुए आहाना को तैयार होने भेज दिया और खुद उसकी विदाई की तैयारी करने लगी। कमिंग सून।